फिर आप देखिए कि आयत नंबर 31 से लेकर 36 तक अब जो मुत्तकी लोग हैं, जो खुदा तरस हैं, अब उनका अंजाम बताया जा रहा है। इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा, बेशक परहेजगार लोगों के लिए मफाज है। मुत्तकी की जमा है मुत्तकीन, और मुत्तकी कौन है? बहुत ज्यादा नमाजें पढ़ना, रोजे रखना, अलहाज हज कसरत से करना, ये तो क्या है कि ये सारे अमल हैं, और बहुत ज्यादा कसरत से इबादत करने वाला मुत्तकी नहीं है, नेक है, ये नेकी के सिंबल हैं। मुत्तकी जो है असल में परहेजगार को कहते हैं कि जो इंसान के अंदर डर की ये कैफियत पैदा कर दे, ये खौफ पैदा कर दे कि फिर हाजी हज के बाद जब तिजारत करे तो फिर हराम जो है उसकी कमाई में शामिल ना हो, फिर नमाजें पढ़ने वाला जो है वो बद जुबान ना हो, फिर वो कतर रहमी करने वाला ना हो, फिर वो हज की हिफाजत करने वाला हो। नमाजें भी पढ़ रहे हैं, अल्लाह का अदा कर रहे हैं, तो फिर बंदों के हकूक भी अदा कर रहे हैं। और जब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह फौत हुए तो उनकी बीवी जो फातिमा थी, लोग उनके पास आए ताजियत करने के लिए और पूछने लगे कि हमें उमर बिन अब्दुल अजीज की कोई खास बात बताएं। कहने लगी, खुदा की कसम वो नमाज पढ़ने में तुमसे ज्यादा आगे बढ़ने वाले नहीं थे और ना ही रोजे रखने में, लेकिन खुदा की कसम वो तकवा में तुमसे बढ़कर थे, वो बहुत ज्यादा अल्लाह से डरने वाले थे। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जिनके दौर को जो है वो खुल्फाए राशिदीन के दौर में शामिल किया जाता है, बनू उमैया में एक ऐसा जो है वो रहनुमा आया जिसे तारीख उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम से याद करती है। और इसकी वालदा कौन थी? वो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की जो है वो पोती बनती हैं, क्योंकि बहू तो वो औरत बनी थी ना जिसने दूध में पानी नहीं मिलाने दिया था, और वो तो फिर बनू मैया का दौर तो हजरत उमर के दौर के बहुत बाद में आता है ना, तो इनकी जो है वो रगों में हजरत उमर का खून जो है कहते हैं दौड़ता है। और इनके बारे में और क्या पता चलता है, जब खलीफा मुकर्रर हुए तो सुलेमान जो है इसने बड़े जुल्म किए हैं, सुलेमान ने बड़े जुल्म किए हैं, लेकिन एक जो भारी नेकी कर गया कि इसने वसीयत की थी कि मेरे बाद जो खलीफा बनाया जाए वो ये उमर बिन अब्दुल अजीज हों, और इसने बंद लिफाफे में रियाया से ना बैत करवा ली थी, जैसे वादा ले लिया था कि हाँ इसको मानेंगे, और जब बंद लिफाफा खोला गया तो नाम इनका निकला। और जब आए थे तो शाही सवारी पर सवार होके वो मस्जिद में आए थे वो सुनने के लिए कि कौन खलीफा बनता है। अब उसके बाद इनको जब खलीफा बना दिया गया तो फिर वो शाही सवारी पर सवार होकर नहीं गए थे, एक जोड़ा पहनते थे दोबारा नहीं पहनते थे कि नजर उस जोड़े को जो है ना वो पुराना कर देती है। खुशबू लगाते थे तो गलियां खुशबू से मुअत्तर हो जाती थी, एक एक जूता पहनते थे तो बहुत कीमती। और फिर जब खलीफा मुकर्रर हो गए तो फिर जो थे पेवन लगे कपड़े, और फिर कोई अपना होश नहीं था, और हत्ता के जितने भी लोगों के जालिमाना फैसले थे फिर एक एक करके उनको उनके खिलाफ करने लगे, और एक हक की तलवार बनकर उमर फारूक की तरह खड़े हो गए। पूरा बनू उमैया एक तरफ और ये एक तरफ थे, हत्ता के इनको जहर देकर मार दिया गया, किसी से डरते नहीं थे। इनके दौर में फिर उलमा और खतीब और फुकहा बगदाद में और बनू उमैया के दौर में, इनके जमाने में फिर उलूम को बड़ा जो है वो उरूज मिला है, बहुत ऐसी महफिलें लगाया करते थे जिसमें जो उलमा इकट्ठे होते थे। इन्ना लिल मुत्तकीन मफाजा, बेशक परहेजगारों के लिए कामयाबी है। मफाज कहा और अफलाहा नहीं कहा, मुफलेहून का अगला दर्जा है मफाज। और ये लफ्ज जो है ये इस्म जिन्स भी है, बल्कि इस्म जिन्स की बजाय कहना चाहिए कि मफाजा का लफ्ज ज़विल अज़दाद में से है। ये जो है वो हलाकत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा जो है ये कामयाब होने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? के फौज ज़विल अज़दाद में से है कामयाब होना, एक होता है कि किसी का कामयाब होने होकर किसी जगह पहुंच जाना, और एक है कि वो कामयाबी जो सच्ची किसी को मिल जाती है ना। और फवज़र रजुल कहते हैं आदमी मर गया, जब मर जाता है तो फिर क्या होता है कि जो नेक होता है फिर वो तो कामयाब ही हो जाता है ना। तो बहरहाल इन्ना लिल मुत्तकीन मफाजा, तो दुनिया में परहेजगारी इख्तियार करने वाले और जो यकीन रखते थे कि क्यामत आएगी और सारी जिंदगी जो है ये यकीन रखते हुए बसर की कि अपने अमाल का हिसाब देना है, ये है मुत्तकी। फौरन जो है अपने मामलात को ठीक करते हैं, बिस्तर पर जो चादर आप बिछाते हैं तो आपको पसंद नहीं आता ना उसमें कोई सलवट हो, तो ये अच्छा लगता है कि दिल के अंदर सलवटें हो, कीना और कदूरत हो, चेहरे के ऊपर छाइयां अच्छी नहीं लगती, धब्बे अच्छे नहीं लगते, झुर्रियां अच्छी नहीं लगती, तो ये अच्छा लगता है कि अमलों के अंदर बल हो, दिल के अंदर बल हो और झुर्रियां हो, कीना कदूरत, हसद नफरत। तो याद रखिए, इन्ना लिल मुत्तकीना मफाजा, परहेजगार लोग उनके लिए कामयाबी है। मिलेगा क्या? हदाइका वाना बा, बहुत से बाग, हदीका की जमा है हदाइक, ऐसे बाग को कहते हैं जिसके इर्द गिर्द चार दीवारी भी हो। तो इनको ऐसे बागात दिए जाएंगे कि जिनके इर्द गिर्द जो है वो चार दीवारी होगी। अरबों के हाँ मारूफ बाग हदाइक थे, और खजूर के बाग, और खजूर के बागों का उम्दा तरीका यह था कि किनारे किनारे खजूरों की बाड़ और बीच बीच में अंगूर और दूसरे फलों और सब्जियों के कतात या अराजी थी। तो अब आप देख लें कि ऐसे उनके पास जमीनें हैं कि इर्द गिर्द तो खजूरों के बागात जो हैं, खजूरों की बाड़े लगाई हुई हैं, जैसे कि चार दीवारी है खजूरों के दरख्तों की, या फिर दीवारों की चार दीवारी भी होती है। और क्या है? वह अनाबा, और अंदर जो है वो अनाब है, ऐन नून बा से है, और ऐनब वाहिद को कहते हैं और अनाब जमा है। और आप देखें कि अंगूर का फल जो है वो कितना खूबसूरत फल होता है कि बहुत अच्छा लगता है देखने में भी, और छिलका भी नहीं होता, अंदर गुठली या बीज भी नहीं होता, और खा लें तो नरम इतना कि मुंह में डालते ही घुल जाए, और मीठा इतना और इतना मजेदार कि आप सोचते ही रह जाते हैं, बिल्कुल ही मुंह के अंदर जाकर जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो उनके लिए बागात भी बहुत से हैं और अंगूर भी बहुत से हैं, और अंगूरों के रंग भी कैसे होते हैं। वह कवाइबा तराबा, जन्नत की बात हो, बागात की बात हो, फलों की बात हो, फिर औरतों का जिक्र ना हो। वह कवाइबा तराबा, और नौजवान औरतें। कवायब लफ्ज आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ये कायबत उनकी जमा है, काफ ऐन बा। टखने को असल में कहते हैं, टखना, आप अपना अपना टखना देखें कैसा है, उभरा हुआ है ना, तो टखना उभरा हुआ होता है। अब यहाँ पे ये जो है इस्तेमाल किया गया है नौजवान औरतों के लिए, तो इनकी छातियों में भी ऐसे ही उभार होगा, और छातियां उभरी भी होना और बड़ी होना ये एक औरत के हुस्नो जमाल का एक मजहर है। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहे हैं, और वैसे भी जब औरत जवान होती है तो क्या होता है कि सीने में एक उभार पैदा होना शुरू हो जाता है, सीना उठना शुरू हो जाता है, तो औरतें जो हैं वो जवान होंगी, उठती हुई जवानियां होंगी, और सिर्फ इतनी नहीं कि उठती हुई जवानियां हैं, नौजवान हैं, अतराबा हम उम्र हैं, और ताराबा किसे कहते हैं? मट्टी को कहते हैं। तो मट्टी में खेलने वाली सहेलियों की बिलअमूम एक जैसी उम्र होती है, तो अतराबा, तो ये औरतें हम उम्र होंगी। वाहिद है तुरबतुन, और जमा है इसकी अतराब, कि ये औरतें जो हैं हम उम्र भी होंगी, उम्रें भी एक जैसी, और नौजवान औरतें हैं। तो मर्दों को जो औरतें मिलेंगी उनकी उठती हुई जवानियां और हमसिन। वकासन दिहाका, और प्याले हैं गिलास हैं छलकते हुए। अब बागात हो और फिर मर्द और औरत जोड़ा जोड़ा हो, और फिर उसके बाद जो है मशरूबात का और खाने पीने का जिक्र ना हो, बड़ी अजीब बात है। वकासन प्याले को भी कहते हैं, और प्याले के अंदर जो चीज पाई जाती है उसको भी कहते हैं। तो असल में कास ऐसे प्याले को कहते हैं जो कि भरा हुआ हो, मशरूब से भरा हुआ हो, इसकी जमा आती है कुउस, और होता है ये प्याला। दिहाका किसे कहते हैं? दिहाका मस्दर है यहां पर, और दाल हा काफ के मानी होते हैं ये प्याले का भर कर छलकना, भरा हुआ प्याला। तो अब कास के अंदर भी ये बात है कि वो भरे हुए हैं, और मजीद ये कहा कि दिहाको, कि वो छलकते हुए हैं। और एक बात याद रखें कि कश्ती जब सामान से भर जाती है तो शहन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ना, और लेकिन प्याला जब पानी से या मशरूब से, और ये मुख्तलिफ नहरें जो आपने सलसबील पढ़ी, जंजबील पढ़ी, तस्नीम और बहुत सी, तो प्याले जो उनसे भरे हुए होंगे तो दिहाका, भरे हुए होंगे, थोड़े नहीं होंगे। मला भी आ सकता था, मला नहीं आया, वो आम लफ्ज है, ये छलकते हुए जाम है। ला यस्मऊन फीहा लगवा वला किज़ाबा, लोग बैठे हुए हैं, बागात हैं, प्यालों के मशरूबात हैं, और अब बात क्या है, ऐसा फिर नहीं है कि लोग बातें ना करें, लोग बातें करते हैं ना, मशरूबात हो, खाना पीना हो, महफिल में है तो बहुत दिल चाहता है कि कभी दोस्त भी मिलकर बातें करें, और क्लास के लोग आप भी आपस में बातें करें, ब्रेक ही नहीं होती है ना, बात करने का मौका ही नहीं मिलता, हत्ता कि तीसरे पारे पे पहुंच गए, क्या करें, कब बातें करें। तो जन्नत में जाकर जन्नती जो है इंशाल्लाह बातें करेंगे, जब वो तकवा की जिंदगी बसर करेंगे, तो जन्नत के लिए जीना चाहिए और जन्नत की तैयारी करनी चाहिए और उसी के शौक में अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए कि इंशाल्लाह जन्नत में मिलेंगे और बातें करेंगे। अच्छा, आमतौर पर जब बहुत अच्छे दोस्त ही बातें करते हैं तो गीबत चुगली इधर उधर की बात आ ही जाती है, ना चाहते हुए भी इधर उधर की बातें हो जाती हैं और जबान की हिफाजत मुश्किल हो जाती है, और फिर बाज़ औक़ात आप हसरत करते हैं, काश कि आज मिले ही ना होते, क्यों अपनी जो है वो नामा अमाल को खराब कर लिया। लेकिन जन्नत की एक खूबी जो मुझे बहुत पसंद है, ला यस्माउन फीहा लगवन, ना वो सुनेंगे उसमें कोई बेहुदा बात। लग जो है किसे कहते हैं, लग का लफ्ज जो है ये इस्तेमाल किया जाता है बेहुदा बात के लिए, ऐसी बातें जिसमें बेहूदगी पाई जाती हो, तो जन्नत के अंदर वो कोई बेहुदा बात जो है वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि आमतौर पे गाली गलोच, तोहमत बकना, इल्जाम लगाना, एक दूसरे के खिलाफ बातें करना, आमतौर पे जिंदगी में जब लोग बातें करते हैं तो ये हाल हो जाता है, लेकिन वहां पे कोई जो है वो लग बात जो है वो नहीं होगी, बेफायदा बात नहीं होगी, बेमकसद बातें नहीं होंगी। ऐसे नहीं कि बेमकसद बैठे हुए हैं और हा हू हाय कर रहे हैं, जैसे कि बाज औकात जो है महफिलों में ऐसा महसूस होता है कि क्या वाकई इन्हीं के दिल में कुरान है जो इस तरह से इस वक्त लगे हुए हैं, है ना, तो क्या है कि वहां पर जो है बेहूदगी नहीं होगी और बेहूदा बातें भी नहीं होंगी, और ये जन्नत की खूबी है। वला किज़ाबा, और ना ही झूठ होगा, किज़ाबा कोई झूठ भी नहीं है, ना वो आपस में एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं। जज़ा मिन रब्बिका अता'अन हिसाबा, बदला है तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से इनाम पूरा पूरा हिसाब से, और हिसाब कहते हैं कि कसीर के मानी में भी है, यानी काफी इनाम है, अता अन इनाम के लिए है और हिसाब मुबालगे के लिए आया है कि अल्लाह की तरफ से जो हिसाब किताब मिलेगा, जो जजा मिलेगी ठीक ठीक होगी, नेकियों का पूरा हिसाब सिले से मिलेगा, छोटी छोटी नेकी भी जाया नहीं होगी जो लोगों से छुप छुप कर की थी खलवतों में, वो भी जाया नहीं होगी। पीछे जहन्नुमियों के लिए आपने क्या पढ़ा था, जहन्नुमियों के लिए पढ़ा था जजा विफाका, तो जन्नतियों के लिए क्या है, अता अन हिसाबा, ये अल्लाह का इनाम है, ये अल्लाह की बख्शिश है, और खूब है अल्लाह का अता करदा जो है ये इनामात। रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा रहमानि ला यमलिकून मिन्हु खिताबा। रब्बिस समावाति, रब है आसमानों का, वल अर्दी और जमीन का, कौन सा रब जो के जजा दे रहा है अतान हिसाबा, ये रब है आसमानों का और जमीन का, आसमानों और जमीन के रब की तरफ से ये जजा दी जाएगी। ममा बेना हुमा, और जो इन दोनों के दरमियान है, आसमान और जमीन दोनों के दरमियान हर चीज का मालिक, जितने आसमान है जितनी जमीन है और जो कुछ इनके दरमियान है उनमें से हर चीज का मालिक, एक तरफ रब कहा, दूसरी तरफ अर्रहमान, बहुत ज्यादा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला, निहायत मेहरबान की तरफ से ये है अतान हिसाबा। तो अल्लाह ताला की तरफ से जो इनाम और अकराम दिया जाएगा अहले ईमान को, जो सिला मिलेगा, अल्लाह ताला कहते हैं जो रब है आसमानों और जमीन और उनके दरमियान की चीजों का, और साथ ही उसकी खूबी क्या है, अर्रहमान, बहुत ज्यादा रहम करने वाला। ला यमलिकूना मिन्हु खिताबा, रहमान तो है ही लेकिन ला यमलिकूना मिन्हु खिताबा, ये अल्लाह की अजमत हैबत और जलाल की तरफ इशारा किया गया है। रहमान समझकर ऐसा ना हो कि तुम नेकियां ना करो और कहो कि अल्लाह तो रहीम और करीम है, गफूर और रहीम है, वो तो बख्श देगा, आप कुछ करने की जरूरत ही नहीं। बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं ना, गीबत करते जाते हैं और कहते हैं अल्लाह रहम करे, झूठ बोलते जाते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला माफ कर दे। तो आम तौर पे होना तो ये चाहिए कि गुनाह करने के बाद माफी मांगी जाए, लेकिन लोग क्या कहते हैं कि तौबा मेरी तौबा, पहले एक बरमट लेते हैं, तौबा मेरी तौबा, अल्लाह माफ करे, और फिर गीबत करने शुरू करते हैं, आगाज इससे करते हैं। कहा कि नहीं, ला यमलिकूना मिनहु खिताबा, नहीं किसी के अंदर ताकत, नहीं किसी के अंदर ये कुदरत, ला यमलिकूना, यमलिकूना का मतलब क्या है, नहीं किसी के पास इख्तियार, मिनहु इससे, खिताबा बात करने का, और उसकी हैबत जलाल, उसकी अजमत का हाल क्या है, यौम यकूमु रूह वल मलाइकतु सफ्फा, उस दिन खड़े होंगे रूह, और रूह से मुराद है जिब्राइल अलैहिस्सलाम। अहले तफसीर की अक्सरियत का ख्याल ये है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है वो खड़े होंगे, वल मलाइकतु और फरिश्ते, मलिक की जमा है मलाइका, फरिश्ते, सफ्फा सफ बांधकर। अहले अरब क्या समझते थे मुशरिकीन, के फरिश्ते हमारी सिफारिश कर देंगे और उनको अल्लाह की बेटियां करार देते थे। तो कहा कि फरिश्तों को तुम जो है वो पूछते हो, उनका हाल तो ये होगा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम और दूसरे मलाइका भी अल्लाह के सामने यूं खड़े होंगे, सफ़ा सफ़ बांधकर, सफ़ बस्ता, जैसे कि खादिम नहीं होते अपनी आका के सामने खड़े हो जाते हैं हाथ बांध कर, कितारे लगा कर, ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़न लहुर रहमान, मन अज़न लहुर रहमान वकाल सवाबा, नहीं वो कलाम कर सकेंगे, तुम सिफारिश पर बैठे हुए वो तो बात भी नहीं कर सकेंगे, कोई जुर्रत नहीं कर सकेगा कि जबान भी खोल सके, इल्ला मन अज़ना, मगर जिसको इजाजत दे कौन, अर रहमान, वही बात कर सकेगा जिसको खुदाए रहमान की तरफ से इजाजत मिलेगी। तो शिफात जो है यहां पे इसकी दो शर्तें बताई जा रही हैं। पहली शर्त यह है कि जिसको शिफात की इजाजत मिले अल्लाह की तरफ से, दूसरी शर्त यह है वक़ाला सवाबा, और वो ठीक बात करे, सही बात करे, सवाबा दुरुस्त भलाई वाली बात, ऐसे नहीं कि अपनी पास से ही कोई बात कर दे, नहीं, ठीक बात करे, सही बात करे, तो वही शख्स जो है उसको बात करने की इजाजत दी जाएगी। अब आप देख लें कि बहुत से लोग जो हैं इस बात पर बैठे हुए हैं कि जरूरत नहीं है अमल करने की, और फलां हमारी सिफारिश कर देगा, फलां पीर वली और फलां जो है वो देवता या मूर्तियां या हमारे खुदा, ये सारे हमारी सिफारिश कर देंगे। तो यहाँ पे जो है अकीदा सिफारिश के जो जोम इरादे हैं लोगों के, उसकी नफी की जा रही है। अव्वल तो सारे अल्लाह की हैबत और जलाल के सामने अदब से खादिमों नौकरों की तरह खड़े होंगे, दोम बात भी नहीं करेंगे, जुर्रत नहीं होगी कोई बोल सके, और सोम बोलेंगे भी तो वही जिसको रहमान इजाजत दे, और चौथी बात यह कि जो ठीक ठीक बात करे। ज़ालिका यौमुल हक, ये है वो दिन जो के बरहक है। तुमने अहले मक्का इसका इनकार किया और आज भी लोग इसका इनकार करते हैं, लेकिन ये है हक का दिन। तो अब आप देखें कि ये है अमर शुदनी, ये होकर रहना है। फमन शा अत्तखज़ा इला रब्बिही मआबा, पस जिसका दिल चाहे अपने रब की तरफ ठिकाना बना ले। इसके मानी क्या है, मआबा औब से लौट कर आने की जगह, और अब जो है अपनी मर्जी है कि तुम अपना ठिकाना जहन्नुम बनाना चाहते हो। सूरत नबा की आयत 22 में आप पढ़ चुकी, लित्तागीना माबा, अब यहां पे भी कहा जा रहा है अपनी मर्जी है, जो चाहे तो जन्नत को अपना ठिकाना बना ले और जो चाहे तो जहन्नुम को अपना ठिकाना बना ले। आना तो सबने अपने रब की तरफ, अब जिसका जी चाहे अपने रब की तरफ पलटने का रास्ता इख्तियार कर ले। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जिम्मेदारी क्या है, आगाह कर देना, बता देना। ये जिम्मेदारी नहीं है कि लोगों के साथ जबरदस्ती की जाए, लोगों की अपनी मर्जी है। लोग अब क्या करना चाहते हैं, सुए अमाल लेकर अल्लाह के दरबार में हाजिर होना चाहते हैं, या जो है वो हुस्ने अमाल लेकर। इन्ना अंजरनाकुम अज़ाबन करीबा, इन्ना अनजरनाकुम, बेशक हमने डरा दिया है तुमको, अजाबन करीबा, करीब के अजाब से, ऐसे अजाब से डराया है जो करीब आ लगा है। आदमी ये समझता है ना, अभी तो बड़ी देर है मौत में। कल ही मैं एक मौत का सुन रही थी कि 48 साल आदमी की उम्र कराची में डेथ हुई है एक दिन पहले, और 4 बेटियां 1 बेटा 5 मिनट के अंदर डेथ हो गई है, 5 मिनट के अंदर हार्ट अटैक हुआ, और दिल को मलते रह गए और डॉक्टरों को ढूंढते रह गए, और औरत बेवा हो गई। सबसे बड़ी बेटी 20 साल की है तकरीबन, और बीवी भी उससे जो है वो 8 10 साल 12 साल छोटी है, और 48 साल उस आदमी की उम्र, और हमेशा के लिए मनोमट्टी के नीचे चला गया। और मैं यही सोच रही थी कि हम सबको भी अपना जायजा लेना चाहिए, वो लोग जो के 20 से ऊपर हैं, वो जो 30 से हैं, जो 40 से ऊपर हैं, और हम समझते हैं कि अभी बड़ा वक्त पड़ा है ना, अभी तो बच्चे छोटे हैं, अभी रिश्ते ढूंढेंगे, रिश्ते करेंगे, फिर करेंगे तैयारियां ना। कोई भी लम्हा मेरी और आपकी जिंदगी का आखिरी लम्हा हो सकता है। गाफिल तुझे क्या करता है ये गाफिल, घड़ियाल ये देता है मना दी, गद्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। इन्ना अनज़रनाकुम अज़ाबन क़रीबा यौमा यन्ज़ुरुल मर्उ, जिस दिन देख लेगा हर आदमी, कौन देखेगा, अलमर, मर जो है ये कहते हैं इंसान को, आदमी को, और इसकी जमा है नास, कि जिस दिन आदमी देखेगा। और यहाँ पे क्योंकि मर इस्तेमाल हुआ है, बजाहिर ये वाहिद लग रहा है लेकिन सारे लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है, जिस दिन इंसान ये सोचेगा देखेगा, मा कद्दमत यदाहू, क्या उसने आगे भेजा, यदान दो हाथों को कहते हैं ना, नून तस्निये का गिर चुका है, कि मैंने अपने दोनों हाथों से क्या आगे भेजा है, हूं उसने। और असल में हाथों से इंसान कमाई करता है ना, मेहनत करता है, मजदूरी करता है, तो उस दिन इंसान जो है वो सोचेगा देखेगा और जो है वो ये कहेगा कि मैंने अपने इन दोनों हाथों से क्या आगे भेजा, अच्छा भी और बुरा भी, जो अमल भी उसने किया होगा दुनिया में वो कयामत के दिन उसके सामने आएगा। सूरत कहफ आयत 49 में आप पढ़ चुकी, वजदू मा अमलू हादिर, जो कुछ उन्होंने किया होगा अपने सामने हाजिर पाएंगे। और इसी तरह सूरत कयामा आयत 13 में आप पढ़ चुकी, युनब्बाउल इंसानु यौमइज़िन बिमा कद्दमा व अख्खर, तो वो सारा कुछ जो है वो इंसान के सामने आ जाएगा। फिर आप देखिए कि कुरान में हमें ये एक जगह ये मजमून नहीं मिलता, कुरान में बार बार हमें ये मजमून मिलता है कि हम इस बात पर गौर किया करें, इस बात का जायजा लिया करें कि हम अपने आगे क्या भेज रहे हैं और पीछे क्या छोड़ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें तवज्जो दिलाते हैं, कहते हैं कि इंसान तू सोच तो सही कि तेरे आगे क्या है और तेरे पीछे क्या है ना। कि आप देख लीजिए कि सूरत जो है, सूरत इंशिकाक आयत 6, या अय्युहल इंसानु इन्नका कादहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, ए इंसान बेशक तू अपने परवरदिगार की तरफ जो है वो पहुंचने वाला है, खूब कोशिश करता है, खूब मेहनत करता है, और फिर जो है वो जल्दी तो अपने रब की तरफ जो है वो पहुंचने वाला है। फिर इसी तरह सूरत अल इंफितार को आप देख लें, आयत 5, अलिमत नफ्सुम्मा कद्दमत व अख्खरत, मालूम हो जाएगा हर आदमी को जो उसने आगे भेजा और जो उसने पीछे छोड़ा, इंसान को ये बात पता चल जाएगी। इसी तरह आप देखिए सूरत तकवीर, अलिमत नफ्सुम्मा अहदरत, उस दिन मालूम हो जाएगा इंसान को कि वो क्या लेकर आया है। और यहां पे भी यही बात है कि उस दिन इंसान को, इंसान देखेगा कि मैंने अपने इन दोनों हाथों से क्या भेजा, क्या आगे किया। और सूरत नबा का, नबा की आखिरी आयत का आखिरी हिस्सा بڑا ہی توجہ طلب ہے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا, اس دن کافر کہے گا کاش کہ میں خاک ہوتا, کاش کہ میں مٹی بن جاتا. جب وہ قیامت کے ہولناک منظر دیکھے گا تو یہ آرزو کرے گا کہ میں مٹی ہوتا, کیونکہ مٹی کا تو کوئی حساب کتاب نہیں ہے نا. بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حیوانات کے درمیان بھی عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کریں گے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن ساری زمین ایک سطح مستوی ہو جائے گی ایک جیسی, جس میں انسان, جنات, زمین پر جلنے والے پالتو جانور, وحشی جانور سب جمع کر دیے جائیں گے. اور جانوروں میں سے اگر کسی نے دوسرے پر ظلم دنیا میں کیا تھا تو اس کا انتقام دلوایا جائے گا, تو اس سے انتقام دلوایا جائے گا. یہاں تک کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا تھا تو آج اس کا بھی بدلہ دلوایا جائے گا. جب اس سے فراغت ہوگی تو سب جانوروں کو حکم ہوگا کہ مٹی ہو جاؤ, اور سب مٹی ہو جائیں گے. اس وقت کافر لوگ یہ تمنا کریں گے کاش ہم بھی جانور ہوتے اور اس وقت مٹی ہو جاتے, حساب کتاب اور جہنم کی سزا سے بچ جاتے. اور اسی مضمون کی ہمیں ایک حدیث ملتی ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اس کے راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جانور, چرند اور پرند سب کا حشر ہوگا, حتیٰ کہ سینگ والی بکری کا بدلہ بے سینگ بکری سے لیا جائے گا جس نے دنیا میں اسے مارا ہوگا. مسلم کی یہ روایت ہے. اب آپ دیکھیں کہ کافروں کا یہ تمنا کرنا کہ کاش کہ ہم مٹی ہوتے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ بھی تمنا کیا کرتے تھے. کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی کسی پرندے کو چہچہاتے دیکھتے تو کہتے کہ کاش کہ ابو بکر ایک پرندہ ہوتا, ذبح کر دیا جاتا لیکن اس کا حساب کتاب نہ ہوتا. کبھی درخت کو دیکھتے تو کہتے کاش کہ ایک درخت ہوتا, کاٹ دیا جاتا اور اس کا حساب نہ ہوتا. کبھی کسی صحابی نے کسی جیسے جانور گزر گیا, اس کی مینگنیاں پیچھے دیکھی بکری وغیرہ کی, تو کہتے کہ کاش کہ ہم یہی ہوتے اور ہمارا حساب نہ ہوتا. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے, اپنا جو تھے محاسبہ کیا کرتے تھے, وہ رویا کرتے تھے اور وہ آخرت کی تیاری کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا کرے اور آپ کو بھی. اور سب سے بڑی بات کہ سوتے جاگتے روتے دھوتے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی میں اور آپ کر کام کر رہے ہیں, بس اب ایک ہی فکر ہونی چاہیے, ایک ہی لگن اور ایک ہی تڑپ کہ مریں گے تو کیا ہوگا, اور جب قیامت کے بعد آخرت آئے گی تو پھر ہم کہاں جائیں گے, میرا اور آپ کا شمار کن لوگوں میں ہوگا, میرا مجھے اور آپ کو مقام کون سا ملے گا. نمازیں پڑھنا, روزے رکھنا, قرآن پڑھنا, کورس مکمل کر لینا, پڑھنا پڑھانا, ساری باتیں بہت اہم ہیں, لیکن ساتھ ساتھ جائزہ لیں کہ نیت کیا ہے, میری سوچ کیا ہے, پھر یہ بھی کہ کیا واقعی میں متقی بھی ہوں. اعمال کی کثرت اللہ کو مطلوب نہیں ہے, من احسن عملا, کہ کون تم میں زیادہ عمل کرنے والا ہے, احسن عملا, کہ کون بہترین عمل کرنے والا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.